आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति असाना। खालसा पंथ के संस्थापक और 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर आज प्रदेश भर के गुरुद्वारों में विशेष अरदास और लंगर के कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ के डीएवी कॉलेज में आयोजित गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिख गुरुओं का गौरवशाली इतिहास आज भी सबको प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह के सामाजिक योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा,
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने की, इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा जा, तो देश और धर्म के मार्ग में बाधक है।
प्रयागराज महाकुंभ के भव्य और दिव्य रूप से आयोजित करने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इन इंतजामों की समीक्षा के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि महाकुंभ मेले के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी 1.5 लाख अस्थायी शौचालयों में पानी की उपलब्धता और उनकी नियमित सफाई के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप मेले में उचित मूल्य की दुकानें स्थापित हो गई हैं। इन दुकानों से 10 जनवरी से लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में पर्यटन विभाग 5 एकड़ क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश पवेलियन बना रहा है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पवेलियन 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसमें राज्य के रामायण सर्किट और कृष्ण ब्रज सर्किट सहित 12 प्रमुख सर्किटों को दिखाया जाएगा। पवेलियन में प्रदेश के सभी 75 जिलों के ODOP उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में अब एक गौशाला को गौ आधारित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। पहले चरण में मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयाग, वृंदावन, लखनऊ और बुंदेलखंड में केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्यामधारी गुप्ता ने अयोध्या में मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर जिले में एक गौशाला को गौ आधारित प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण केंद्र बनाना है। इस गौ आधारित प्राकृतिक कृषि में एक गाय या एक बैल दिन में जो 5-7 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर देता है, उससे जीवामृत, घनजीवामृत, पेस्टिसाइड का निर्माण होता है। खेतों में केमिकल नहीं डालना पड़ेगा।
गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने बताया कि प्रदेश के 20 लाख किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठंड के मौसम में पूर्वांचल के यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर से दिल्ली के बीच स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेन गोरखपुर से 6 फरवरी से और दिल्ली से 7 फरवरी से चलाई जाएगी। इस ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 10 और शयनयान श्रेणी के 4 सहित कुल 16 कोच लगाए जाएंगे। कुशीनगर जिले की कप्तानगंज चीनी मिल पर किसानों के गन्ना मूल्य सहित करीब 77 करोड़ रुपए के बकाए के भुगतान को लेकर कप्तानगंज तहसील प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उपजिलाधिकारी योगेश्वर सिंह के मुताबिक चीनी मिल द्वारा भुगतान न किए जाने से किसानों की परेशानी को देखते हुए चीनी मिल की भूमि और चल संपत्ति नीलाम करने का निर्णय लिया गया है। कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम थाना क्षेत्र में मां शीतला धाम के गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान आज 4 लोग नदी में डूब गए। इनमें से एक को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नदी में डूबे एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जबकि अन्य 2 व्यक्तियों की नदी में तलाश जारी है। प्रदेश में मौसम का मिजाज आज मिला जुला रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली और उसके आसपास के जिलों में सुबह कोहरे के बीच जहां हल्की बारिश हुई, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और आसपास के कुछ जिलों में सुबह कोहरे के बाद दिन में धूप खिली रही। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी जिलों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।